नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अगले कुछ वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर। श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का चौथा टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लगभग 74% मतदान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में माओवादी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद, 1 मजदूर भी मारा गया। ईरान में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार सभी 66 लोग मारे गए। और जोहानिसबर्ग में तीसरे महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। पुरुषों के मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं आशुतोष जैन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पहले वैश्विक निवेशक सम्मेलन मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस 2018 का आज शाम मुंबई में उद्घाटन किया। श्री मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महाराष्ट्र ने करिश्माई शक्ति विकसित की है, जिससे वो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 3.5 साल के निरंतर प्रयासों से अगले कुछ वर्षों में भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल होने जा रहा है।
दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो जाएगा। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने का एक विजन है, उसके पीछे प्रयास है।
महाराष्ट्र समृद्धि गलियारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 700 किलोमीटर लंबे सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे और इससे जुड़ी स्मार्ट शहर में लगभग 20 लाख रोजगार पैदा करने की क्षमता है। इससे कृषि और कृषि आधारित विकास को भी गति मिलेगी। इससे पहले श्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया। इसी समारोह में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के चौथे टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने नवी मुंबई हवाई अड्डे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा नया हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उड़ान परियोजना के तहत देश के कस्बों और शहरों में लगभग 100 छोटे हवाई अड्डे संचालित किए जाएंगे।
आज हमारे देश में करीब करीब 450 हवाई जहाज ऑपरेशनल हैं, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब मिलाकर। आजादी से अब तक हम 450 पर पहुंचे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, इस एक वर्ष में इस देश के एविएशन सेक्टर द्वारा 900 नए हवाई जहाज के ऑर्डर बुक किए गए हैं।
बंदरगाह पर चौथे कंटेनर टर्मिनल के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बंदरगाह आधारित विकास के लिए सागरमाला परियोजना शुरू की है।
हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के 7,500 किलोमीटर का विशाल समुन्दर हमारे पास है। हम समुद्री क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की संभावना वाली हमें भौगोलिक रूप से व्यवस्था मिली हुई है। ये हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे फायदा उठाएं इस अवसर का और हम अपनी व्यवस्थाओं को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री मार्ग के जरिए माल परिवहन न केवल सस्ता है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है।
ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अंदर 100 से ज्यादा वाटर वे हमने आइडेंटिफाई किए और पूरे देश में हमें लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम रेल या रोड के बजाय अगर वाटर वे का उपयोग करें तो हम बहुत ही कम खर्च में चीजों को मुहैया करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान करके हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू तथा केंद्रीय जहाजरानी और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। एक रिपोर्ट।
रिकॉर्ड 28 महीनों में बनने वाले इस कंटेनर टर्मिनल की लागत 4,719 करोड़ रुपए आई है। इससे 24 लाख कंटेनर की क्षमता का इजाफा होगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 160 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें दो समानांतर रनवे होंगे। इसके पहले चरण की दिसंबर 2019 में बन जाने की उम्मीद है। इसकी क्षमता 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष होगी। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरु और श्रवण बेलगोला में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने आज रात कर्नाटक पहुंच रहे हैं। वे रात मैसूर रुकने के बाद श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के 88वें महामस्तकाभिषेक महोत्सव में शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज?
भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं।
किचन में क्यों, कोमल बिटिया का है?
कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी।
मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी ये क्या कर रखा है?
कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है।
बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
छह महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी न सुन पाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में शाम 4 बजे तक 74% मतदान दर्ज किया गया। आज 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से 59 सीटों के लिए वोट डाले गए। चारीलाम सीट के स्थगित चुनाव के लिए मतदान 12 मार्च को होगा। उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने नई दिल्ली में बताया कि राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का भी इस्तेमाल किया गया।
आज राज्य भर में मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ वोट दिया। पुलिस ने कहा कि राज्य में कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस चुनाव में कुल 292 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इस विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम गठबंधन और बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इस बार मुख्य उम्मीदवारों के तौर पर मुख्यमंत्री माणिक सरकार, जो सिपाहीजला जिले के धनपुर निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि भाजपा प्रदेश प्रमुख बिप्लव कुमार देव पश्चिम त्रिपुरा जिले के बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। निशित जोशी, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
मतगणना नागालैंड और मेघालय के साथ ही 3 मार्च को होगी। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले में एक माओवादी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं और एक मजदूर मारा गया। माओवादियों ने चिंता गुफा के पास भेज्जी इलाके में सड़क निर्माण स्थल पर हमला किया था और एक मजदूर की हत्या की। माओवादियों ने कुछ वाहनों को भी आग लगा दी। उन्होंने निर्माण स्थल की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ, विशेष कार्यबल और जिला रिजर्व गार्ड के जवानों पर गोलीबारी की। सुरक्षा कर्मियों ने भी इसका माकूल जवाब दिया। गोलीबारी में डीआरजी के 2 सहायक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 6 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायल जवानों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। श्री अहीर आज रायपुर में आयोजित विकास संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में माओवाद रोधी अभियान में लगाए गए केंद्रीय अर्धसैन्य बलों और राज्य पुलिस के बीच अब बेहतर समन्वय है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में विकास कार्य एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यही कारण है कि वो अपने सहयोगी दलों को आसानी से साथ लेकर चल रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में शुरू हुई ये पार्टी कभी भी देशभक्ति के अपने मूल सिद्धांतों से नहीं भटकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुदलीय पद्धति ने लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है।
कुछ दल हैं जिनकी आज संसद में भी उपस्थिति है, उनके अपने विचार हैं, हर इश्यू के प्रति समस्या को देखने का उनका अपना नजरिया है और इतने सब दलों के होने के कारण भारत के लोकतंत्र का एक गुलदस्ता बहुत सुहावना लगता है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज नई दिल्ली में पीजीडीएवी कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि अब रोजगार की परिभाषा बदल गई है। श्री कोविंद ने छात्रों से कहा कि वे अपने करियर को बढ़ाने के लिए सरकारी अवसरों का लाभ उठाएं और दूसरों के लिए भी अवसरों का सृजन करें। ये समाचार आपको आकाशवाणी से सुनाए जा रहे हैं।
यार, आधार में पता बदलवाना है, कहाँ जाऊँ?
अरे पास के बैंक में चला जा।
बैंक में आधार?
हाँ, अब आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा कई बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध है। बैंक शाखाओं की सूची देखने के लिए uidai.gov.in पर जाएं या 1947 पर कॉल करें। और हाँ, आधार में मोबाइल नंबर डालना ना भूले। इससे आधार ओटीपी के द्वारा आप अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर घर बैठे वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान।
ये आकाशवाणी है। ईरान में एक यात्री विमान आज जागरस पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 66 लोग मारे गए। एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि विमान में एक बच्चे सहित 60 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य थे। ईरान के राहत और बचाव संगठन रेड क्रिसेंट ने क्षेत्र में 12 दल भेज दिए हैं। जोहानिसबर्ग में 5 2020 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 5 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 133 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर में 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। श्रृंखला में भारतीय महिला टीम अभी भी 2-1 से आगे है। उधर जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम समाचार मिलने तक 14 ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 5 विकेट पर 203 रन बनाए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 2 दिवसीय सम्मेलन आज पटना में सम्पन्न हो गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों द्वारा संसद और विधानसभाओं में व्यवधान पैदा किए जाने पर चिंता व्यक्त की। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, युगांडा और टोंगा के अलावा देश भर से आए 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से आज रियाद में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई। श्री जेटली 2 दिन की सरकारी यात्रा पर आज सवेरे सऊदी अरब पहुंचे, जहां वे भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। युवा मामला और खेल तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि केंद्र पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने आज जयपुर में जयपुर महाखेल के समापन समारोह में कहा कि खेलो इंडिया स्कूल खेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित किए गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। आप टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का 4वां टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के 88वें महामस्तकाभिषेक महोत्सव सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लगभग 74% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में माओवादियों के हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और एक मजदूर मारा गया। ईरान में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार सभी 66 लोगों की मौत हो गई है। और जोहानिसबर्ग में तीसरे महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। पुरुषों के मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।